उपस्थित महानुभाव, सत्संग प्रेमी माताओं, बहनों और भाइयों, हम सब लोग मानव हैं, मानव होने के नाते साधक हैं और साधक के जीवन की एक बड़ी विशेषता यह है कि उसे अपने वर्तमान में सिद्धि मिलनी चाहिए। वर्तमान में सिद्धि मिलने का अर्थ क्या है कि आज इस अपने वर्तमान क्षण को हम देखें, थोड़ी देर के लिए अकेले होकर अपने संबंध में विचार करें तो ऐसा मालूम होता है कि स्वतः अपने आप में जीवन अपने आप में ऐसा भरपूर नहीं लगता है कि हम अकेले शांतिपूर्वक आनंदपूर्वक रह सकें। अकेले होने पर यदि थोड़ी देर के बाद जी उबता है और ऐसा लगता है कि कहीं घूमने चलें, किसी से मिलने चलें, कुछ करने लग जाएं, तो इसका अर्थ यह है कि भीतर अभाव है और वह अभाव की पीड़ा अपने को सहन नहीं होती, अच्छी नहीं लगती, तो जी बहलाने का कुछ बाहरी आधार हम खोजने लगते हैं। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। होना चाहिए ऐसा कि जब संसार के साथ संयोग बने तो हम उसके काम आए, उसको सहयोग दें, उसके प्रति सद्भाव रखें। ईश्वर विश्वासी हैं तो अपने प्यारे प्रभु की लीला देखें, ऐसा होना चाहिए। और यदि संसार के साथ हम नहीं हैं, उसके काम आने का अवसर नहीं है, उसको सहयोग देने का अवसर नहीं है, तो अकेले होने पर, शांत होने पर जीवन अपने आप में इतना पूर्ण होना चाहिए, अपने आनंद में इतनी मस्ती रहनी चाहिए कि शरीर और संसार की याद भी ना आवे। तो सच्ची बात तो यह है, जीवन का सत्य ऐसा ही है। और जब तक स्वतः अपने आप में हमें भरा पूरा नहीं लगता, अभाव सताता है, अपने से भिन्न की जरूरत महसूस होती है, तो इसका अर्थ है कि हम अभाव से पीड़ित हैं। साधक के जीवन की सफलता क्या है? तो साधक के जीवन की सफलता यह है कि शारीरिक और मानसिक शक्तियां जो मिली हैं, योग्यताएं मिली हैं, बल मिला है, यह सब संसार के काम आ जाए, तो मेरे पास जो कुछ है वह संसार के काम आवे और मुझे स्वयं अपने लिए शरीर और संसार की आवश्यकता न रहे, इसको सफलता कहते हैं, इसको विकास कहते हैं। आज अपनी दशा सोचकर देखा जाए तो कैसा लगता है? क्या हमारे पास जो कुछ है सब जगत के काम आ गया? क्या यह जीवन सब प्रकार से संसार के लिए उपयोगी हो गया, हितकर हो गया? ऐसा पूछ करके अपने से देखा जाए। क्या बिना शरीर और संसार की सहायता के अपने आप में, अपने आनंद में रहने आ गया? तो यदि ऐसा लगता है कि मेरे पास जो कुछ है वह संसार के लिए हितकारी कार्य में लग गया, तो इन सब तत्वों की आवश्यकता संसार को है, तो ऐसा जो व्यक्तित्व होता है कि जिसकी आवश्यकता संसार को होती है, जो संसार के काम आता है, उसकी आवश्यकता संसार महसूस करता ही है। और विकसित जीवन का अर्थ होता है कि अपने लिए शरीर और संसार की आवश्यकता न रहे। तो अभाव जब सताता है व्यक्ति को, तो विचार के आधार पर, विवेक के प्रकाश में वह अपने जीवन का अध्ययन करता है और उस अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जो व्यक्ति अपने से भिन्न पराश्रय के द्वारा अपने को पूर्ण बनाना चाहेगा वो कभी भी निश्चिंत और निर्भय नहीं हो सकेगा। स्व से भिन्न पर का आश्रय लेना, यही इस जीवन का बहुत बड़ा अनादर है। तो हम सभी मानव होने के नाते इस जीवन में जो अभाव सताता है, उस अभाव को मिटाने के लिए जीवन के सत्य की चर्चा करने यहाँ बैठे हैं। तो अभाव का अभाव कैसे होता है, अभाव कैसे मिटता है, इस पर विचार कर लें। मानव का जो अपना व्यक्तित्व है, उसमें क्रिया शक्ति, भाव शक्ति और विचार शक्ति, तीनों प्रकार की शक्तियां जन्मजात हैं। यदि हम ऐसा मानते हैं कि जीवनदाता परमात्मा है, ऐसा हम मानते हैं कि कोई हमारा रचयिता है, तो हमें ऐसा मानना चाहिए कि मुझको उन्होंने मेरे व्यक्तित्व की रचना में ही तीनों प्रकार की शक्तियों को देकर बनाया है। तो क्रिया शक्ति का सदुपयोग किया जाए। सदुपयोग क्या है कि कोई भी कर्म अपना विवेक विरोधी न हो, संसार के लिए किसी भी प्रकार से अहितकर न हो। तो साधना के जीवन का आरंभ ही होता है कि जब हम विवेक विरोधी कर्मों का त्याग करते हैं। विवेक विरोधी कर्म होना ही नहीं चाहिए। किसी भी प्रकार से किसी भी प्राणी को क्षति पहुंचाने वाला कोई भी काम हमारे द्वारा नहीं होना चाहिए। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि जो भी दृश्य जगत अपने सामने दिखाई दे रहा है, उस दृश्य जगत का कोई अंश ऐसा नहीं है जो सदा के लिए मेरा साथ दे सके। इसका परिचय आपने संसार में रहते हुए पाया है कि नहीं? जी पाया है। ऐसा कोई दृश्य हो ही नहीं सकता जो सदा के लिए आपका साथ दे सके। दूसरी बात जो दार्शनिक सत्य है वो ये है कि जो आपका दृश्य बन सकता है वह जीवन नहीं हो सकता। जीवन का दृश्य नहीं बनता। जो जीवन है, जो सत्य है, जो स्व में ही है, उसका दृश्य नहीं बनता है। इससे यह अर्थ निकला कि जिसका दृश्य बन सकता है, अर्थात जो मेरी इंद्रियों का विषय बन सकता है, जो मेरी बुद्धि का विषय बन सकता है, वह जीवन नहीं है। ठीक है, अब इसके आगे बढ़िए। अब देखिए तो इससे स्पष्ट हो गया कि जो मेरा दृश्य बन सकता है वह जीवन नहीं है, वह सदा के लिए मेरे साथ रह नहीं सकता और वह मेरे अंतर्निहित अभाव को मिटा भी नहीं सकता। उसमें हम सदा के लिए संतुष्ट रह भी नहीं सकते। फिर भी जब हम देखे हुए जगत के महत्व को स्वीकार कर लेते हैं, उसके संयोग जनित सुख से अपने भीतर के अभाव को ढक देना पसंद करते हैं, तो इसमें अपने को सफलता नहीं मिलती है। थोड़ी देर तो अच्छा लगता है, भीतर से अभाव सता रहा है और उसकी पीड़ा से बचने के लिए दृश्य जगत में कुछ कुछ वस्तुओं को पसंद कर लिया, कुछ व्यक्तियों को पसंद कर लिया, कुछ परिस्थितियों को पसंद कर लिया, और वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, अवस्था, इनमें से जो भी कुछ अपने को पसंद आता है उसके संयोग से हम सुख लेना चाहते हैं, तो इस प्रयास में व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती। संयोग जनित सुख थोड़ी देर के लिए सुखद मालूम होता है, कुछ देर के बाद वह अप्रिय लगने लगता है और कुछ देर के बाद वह छूट जाता है अथवा छोड़ने के लिए हम बाध्य हो जाते हैं। यह आपकी जानी हुई बात है कि नहीं? ऐसा कभी अनुभव किया ही होगा, हमेशा ही ये स्वभाव ही है। तो सलाह ये है, अनुभवी संत ने परामर्श दिया तो उन्होंने यह कहा कि हम मानव हैं और मानव होने के नाते इस बात को अपने द्वारा जानते हैं कि संसार में जहां जहां मैंने संयोग जनित सुख पसंद किया उससे जीवन का अभाव मिटा नहीं। मनोवैज्ञानिक स्तर पर यह बताया गया कि अभाव का कष्ट जो है वह उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। कैसे बढ़ता जाता है कि परिस्थिति सदैव एक सी रह नहीं सकती, वस्तु का संयोग सदा के लिए हो नहीं सकता, व्यक्ति का संयोग सदा के लिए हो नहीं सकता, लेकिन जो सदा के लिए मेरे साथ नहीं रह सकता उसको मैंने पसंद किया, उसमें मैंने सुख माना, तो मेरे सुख मानने के प्रभाव से उनका राग अपने में अंकित हो जाता है। वस्तुओं और व्यक्तियों के संयोग का जो एक सुखद भास मुझको हुआ उसका एक प्रभाव अहम में अंकित हो जाता है, स्टैंपिंग इन हो जाता है। फिर क्या हुआ, परिस्थिति बदल गई और उसमें जो मैंने सुख माना था उसका एक राग अपने में रह गया। तो क्या होगा, फिर परिस्थिति तो चली गई और रह रहकर उसकी याद आएगी तो अच्छा लगेगा कि अभाव सताएगा, अभाव सताएगा। ये होता है, किसी व्यक्ति का संयोग अपने को बहुत प्रिय लगा, मैंने सुख माना, फिर व्यक्ति का संयोग तो हमेशा वियोग में बदलता ही है, तो परिस्थिति वश संयोग जो था वह वियोग में बदल गया, तो व्यक्ति का संयोग छूट गया परंतु उस संयोग में मैंने सुख माना था। मनोविज्ञान वेत्ता कहते हैं कि जब मैंने सुख माना तो उसका प्रभाव हमारे अहम में अंकित हो गया। जब परिस्थिति बदल गई, व्यक्ति का संयोग छूट गया, वियोग हो गया, तो व्यक्ति तो चला गया, मेरे शरीर के निकट से चला गया, अथवा उसका शरीर नाश हो गया, चाहे जो भी हुआ हो, तो संयोग तो वियोग में बदल गया परंतु संयोग जनित सुख का राग जो मस्तिष्क में रह गया वो बार 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 ध्यान में आएगा, रह रह के उसकी याद आएगी, उसी सुख को पुनः दोहराने की अनेक प्रकार से कामनाएं उत्पन्न होती रहेंगी और वो मिलेगा फिर वैसा कभी नहीं। तो भाव भरेगा कि अभाव सताएगा, यही होता है, यह जीवन का सत्य है। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि इस बात को पुस्तक में से पढ़ना पड़ेगा कि दूसरों से सलाह लेनी पड़ेगी कि विश्वविद्यालय की डिग्री लेनी पड़ेगी कि भैया जो जीवन तुम दिन रात संसार में बिता रहे हो उसी में से इस सत्य को जान लेते हो कि नहीं। जी जान लेते हैं, तो जान लेने का जीवन दाता ने जो जानने की शक्ति प्रदान की उस शक्ति के आधार पर जब आपने इस बात को जान लिया कि दृश्य जगत में से कोई भी दृश्य ऐसा नहीं है जो सदा के लिए मेरा साथ दे सके, तो फिर उसके संयोग के सुख में अपने को बहलाने का कोई अर्थ नहीं निकलता है। जब जानते हैं कि सदा के लिए यह बना नहीं रहेगा तो उसको अपने जीवन का आधार बनाने का कोई अर्थ नहीं है। मनुष्य होकर अपनी जानकारी जो है उस जानकारी से लाभ नहीं उठाना, यही असत का संग है। और सत्संग क्या है, सत्संग यह है कि जीवन की घटनाओं ने जो जानकारी मुझे दी उस जानकारी से हम लाभ उठाएं। क्या करें, तो जब यह स्पष्ट है कि कोई भी दृश्य सदा के लिए सुखद नहीं लगता, एक बात, सदा के लिए उसका संयोग बना रह नहीं सकता, दूसरी बात, और जितना जितना उसके संयोग जनित सुख को लेंगे हम उतना ही अधिक अधिक भीतर से अभाव बढ़ता जाएगा, असमर्थता बढ़ती जाएगी, नीरसता बढ़ती जाएगी। अब जैसे मान लीजिए कि कोई परिस्थिति आपको बहुत ही सुखद लग रही थी तो वो बदल गई, तो परिस्थितियां तो बदलती हैं, स्थिर रह नहीं सकती। तो बदल जाने के बाद अगर फिर उसी परिस्थिति के सुख को आप याद करते रहें, उसी को पाने के लिए तरसते रहें, उस परिस्थिति को पा भी नहीं सकेंगे और उसके चिंतन से छूट भी नहीं सकेंगे, तो ये सामर्थ्य की पहचान है कि असमर्थता की। यह असमर्थता हम लोगों ने अपने द्वारा अपने जीवन में अनुभव किया है। तो अभाव हो गया, असमर्थता हो गई, नीरसता हो गई। संसार की ऊंची से ऊंची परिस्थिति को अपने सामने रखकर देख लीजिए, उसमें कोई ऐसा तथ्य नहीं है जो आपको अभाव से मुक्त कर सके, असमर्थता से मुक्त कर सके, नीरसता से मुक्त कर सके। जितना ही अधिक भोगे हुए सुख और अतृप्त वासनाओं का प्रभाव होता है मस्तिष्क में, प्रभाव होता है जीवन पर, उतना ही अधिक व्यक्ति अपने को असमर्थ पाता है, अभाव और नीरसता से पीड़ित पाता है। तो आप सभी विचारशील व्यक्ति जिस परिस्थिति में हैं, जहां पर हैं, उसी परिवेश में अपने को रख करके देखिए कि जितना समय मैंने जीवन का बिताया, उतने समय में कौन सी ऐसी उपलब्धि हुई अपनी जो कि इस असमर्थता, नीरसता और अभाव से मुझे मुक्त कर दे। ऐसी कोई उपलब्धि हुई क्या, ऐसा सोच करके देखिए। पहले साधारण वर्ग के व्यक्ति थे, अब पुरुषार्थ किया, प्रारब्ध ने कुछ साथ दिया, अधिक संपत्तिशाली हो गए, ठीक बात है। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भैया 3/4 को 75/100 कर लिया तुमने, तुम्हारा मूल्य कुछ बढ़ गया क्या? पहले थोड़ा झंझट था, अब ज्यादा कर लिया। पहले थोड़ी वस्तुएं पास में थी, अब अधिक विस्तार हो गया। तो ठीक है, अगर ज्ञान के प्रकाश में यह देखते हैं आप कि ये वस्तुएं मेरे काम नहीं आएंगी, मृत्यु का भय मेरा बना हुआ है, वस्तुओं के संग्रह से मृत्यु का भय नहीं मिटेगा, वस्तुओं के संग्रह से भीतर का अभाव नहीं मिटा, वस्तुओं के संग्रह से असमर्थता और नीरसता का नाश नहीं हुआ, तो मनुष्य होने के नाते विचार के प्रकाश में इन बातों को देखकर यदि आपने साधना का दृष्टिकोण अपना लिया, अर्थात आई हुई वस्तुएं किस काम के लिए हैं, तो मुझको हृदय से उदार होकर के प्राप्त वस्तुओं का पीड़ित जनों की सेवा में सदुपयोग करना चाहिए। तो विचार से आपने काम ले लिया तो वस्तुओं का मूल्य आपकी दृष्टि में घट गया, और वस्तुओं के सदुपयोग से आपका चित्त उदार हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, इस साधना की दृष्टि को आपने बढ़ा लिया, तो साधना आरंभ हो गई। आई हुई सुखद परिस्थिति ने मेरे भीतर सुख भोग के परिणाम से पराधीनता और असमर्थता को बढ़ाया था, इस बात को आपने अपने द्वारा जाना। अब क्या करेंगे कि अब आई हुई सुखद परिस्थिति का दुखियों की सेवा में सदुपयोग करके हम परिस्थितियों के ऊपर उठेंगे, अर्थात हृदय को उदार बनाएंगे, चित्त को शुद्ध बनाएंगे, तो साधना आरंभ हो गई। तो वस्तुओं का आना बुरा नहीं है, संपत्ति का आना गलत नहीं है, शक्ति की वृद्धि में कोई दोष नहीं है, लेकिन शक्ति की वृद्धि हो, संपत्ति की वृद्धि हो, वस्तुओं का उत्पादन हो, तो वो शरीरों की सेवा में लग जाए और निष्प्रिय भाव से लग जाए, और इस बात की पक्की जानकारी लेकर इसका सदुपयोग आप कर डालें कि ये संसार की वस्तुएं यही रहेंगी, मेरे साथ जाएंगी नहीं, मेरा काम बनेगा नहीं, ये तो प्रकृति के विधान से मेरे पास आई हैं केवल इसलिए कि मुझे अपने चित्त को शुद्ध करना है, मुझे इनके मोह से मुक्त होना है, मुझे इनके संयोग के सुख की आसक्ति से मुक्त होना है। तो सुख की आसक्ति से मुक्त होने के लिए सुख भोग की वासना का त्याग करके उदारता पूर्वक यदि प्राप्त बल का सदुपयोग दुखियों की सेवा में कर डालें तो आप साधक हो गए। और मेरे ही काम आवे और मोह के परिवार के ही काम आवे और एक पीढ़ी का इंतजाम हो गया तो दो चार पीढ़ी का इंतजाम हो जाना चाहिए, अगर यही भ्रम घेरे हुए है आपको तो फिर तो साधना तो नहीं बनेगी। आप शांत होना पसंद करेंगे, अकेले बैठेंगे तो वही चिंतन आपके मस्तिष्क को घेर करके रखेगा। तो दिन में कार्य करते समय वही संसार अपने भीतर भरा है, शांत होते समय उसी का चिंतन सता रहा है, गहरी निद्रा में सोते समय स्वप्न में वही भरा हुआ है। तो जो बन रहा है, बदल रहा है, बिगड़ रहा है, मिट रहा है, जिसका नाम संसार है, जिसका नाम दृश्य है, सब समय अपने को मैंने उसी के साथ मिला करके रखा तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहने का कोई अर्थ नहीं निकलता है। अपना ही अस्तित्व, स्वतंत्र अस्तित्व जिसका कि कभी नाश नहीं होता, उस सत्ता के रहते हुए भी मृत्यु के भय से भयभीत रहना, ये दुख कभी मिटेगा नहीं। अनुभवी संतजन सलाह देते हैं। और जब मैंने महाराज जी के पास बैठकर अपने दुख निवृत्ति का उपाय पूछा, सोचने लग गई, उनके बताए हुए उपायों को मैं किस तरह से अपने जीवन पर लागू करूं, इस विषय में अधिक अधिक विचार करने लग गई तो मुझे एक बड़ी अच्छी बात मालूम हुई जो कि पहले नहीं मालूम थी। संत मिलन से पहले उस बात का मुझे पता नहीं था। स्वामी जी महाराज की शरण में बैठकर मैंने यह पाया कि मनुष्य जो है वह पूरा का पूरा भौतिक तत्वों से बना हुआ नहीं है। शरीरों का भाग जो है, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, ये तो भौतिक तत्वों से निर्मित हैं। लेकिन जो कहता है कि ये शरीर मेरे हैं, वह स्वयं भौतिक तत्वों का बना हुआ नहीं है। अगर भौतिक तत्वों का बना हुआ होता तो भौतिक जगत के संबंध में उसमें प्रश्न नहीं उठता कि संसार क्या है, नहीं होता। भौतिक तत्व जो हैं, वो भौतिक तत्व के संबंध में प्रश्न नहीं करते। लेकिन आप जब देखते हैं संसार की परिवर्तनशीलता को, जब आप देखते हैं अपनी बनी बनाई योजना को फेल होते हुए, तो आपके भीतर प्रश्न उठता है कि भाई ये सब क्या है। तो मनुष्य जो है वह केवल भौतिक तत्वों का बना हुआ नहीं है। फिर मेरे ध्यान में आया कि स्वामी जी महाराज जो ये सलाह देते हैं कि भाई यह दृश्य जगत तुम्हारे काम नहीं आएगा, ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है, तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं है, ऐसा उन्होंने बारंबार कहा, तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं है। तो ध्यान देने से एकदम मेरी समझ में आ गई यह बात कि मेरी उत्पत्ति उस अनंत तत्व से हुई है जो अविनाशी है, अनंत है, सत्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शांति स्वरूप है और प्रेम स्वरूप है। उसमें से हम सब भाई बहनों की उत्पत्ति हुई है, उन्होंने अपने ही में से हम सब भाई बहनों को बनाया है। फिर जब मैंने शरीर के साथ अपने को मिला लिया तो शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसार पर मेरी दृष्टि गई, तो मुझे दृश्य जगत की आवश्यकता महसूस होने लगी। मेरे पास एक शरीर है और उसमें बहुत प्रकार की कमी है और मेरे सामने एक विशाल सृष्टि है और शरीर की कमी को पूरी करने की बहुत सी सामग्री इस संसार में है। तो मुझसे बड़ी भारी भूल ये हो गई कि शरीर की कमियों को दूर करने के लिए, उसकी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए संसार के साथ लिपटने में ही मैंने बहुत सारा समय निकाल दिया। मुझे स्वयं क्या चाहिए इस पर ध्यान ही नहीं गया। तो कितने प्रकार के विकार उत्पन्न हो गए, कहीं दीनता आ गई, कहीं अभिमान आ गया, कहीं राग बन गया, कहीं द्वेष बन गया। इतनी बीमारियां लग गईं कि उस बेचैनी में क्षण भर के लिए कहीं पर विराम नहीं मिलता। जब संत ने मुझे सुझाव दिया कि यह सब तो तुम्हारा है नहीं और यह सब तुम्हारे काम आएगा नहीं, तो मुझे स्पष्ट दिखाई देने लग गया कि जब मैं उस अनंत तत्व के समान ही अविनाशी स्वरूप, अविनाशी सत्ता रखती हैं, तो फिर क्या बात हो गई। तो बात केवल इतनी सी है, और आज मैं सभी भाई बहनों को बहुत ही ईमानदारी से यह सलाह देती हूँ कि एक ही दिन का सुबह से शाम तक का अपना रूटीन देख लीजिए और सोने से पहले थोड़ा सा अपने संबंध में विचार कर लीजिए, तो आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि सारा समय और सारी शक्ति मैंने शरीर और संसार के एडजस्टमेंट में बिताया है, इन्हीं दोनों के अभियोजन में बिताया है कि अपने अविनाशी स्वरूप में स्थित होकर उसमें जो स्वयं का आनंद है, उस आनंद के अनुभव करने के लिए भी अपने को कोई समय दिया क्या जी? अगर दिया होता तो दुखों का अंत हो जाता, अगर दिया होता ध्यान इस बात पर तो मृत्यु का भय चला गया होता, अगर उस बात पर ध्यान दिया होता तो अभाव का अभाव हो गया होता, सब प्रकार के अभाव मिट गए होते, ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, अब से सही, अभी भी समय है, वर्तमान हमारा आपका सामने है, अब से भी यह एक आवश्यक कार्यक्रम मानव जीवन का हम सब लोग पूरा कर सकते हैं। वस्तुतः अपना जो आकर्षण है, हमारा जो खिंचाव है, वो उस अनंत तत्व की ही ओर है। महाराज जी ने एक जगह कहा था कि भाई जैसे जैसे धरती में आकर्षण शक्ति है और उस आकर्षण से आकर्षित होकर सारे भौतिक तत्व धरती की ओर खींचते हैं, ऐसे ही मनुष्य का अटूट संबंध उस अनंत तत्व से है। और कितना भी आप अपने को संसार में फुसलाने की, बहलाने की चेष्टा करें, भीतर से एक खिंचाव, एक आकर्षण हर भाई बहन का उस अनंत तत्व की ओर लगा ही रहता है। किसी न किसी रूप में उसका चिंतन भी आता है, किसी न किसी रूप में उसकी चर्चा भी आती है, यह मनुष्य के लिए बिल्कुल स्वाभाविक बात है। अब उत्थान का उपाय क्या होगा? कि उत्थान का उपाय यह होगा कि सारा समय और सारी शक्ति हम भाई बहनों को शरीर और संसार के अभियोजन में खपा नहीं देना चाहिए। 24 घंटे के समय को इतनी अच्छी तरह से सेट कर लेना चाहिए कि आवश्यक कार्य को पूरा करने के बाद थोड़ा थोड़ा समय अपने लिए बचा के रखें, जबकि हम अकेले होंगे, शरीर और संसार मुझे उत्तेजित नहीं करेगा और स्वयं अपने आप के संबंध में विचार करेंगे, अपने में जो शांति विद्यमान है उस शांति में रह करके उस अलौकिक जीवन का अनुभव लेंगे। यह एक आवश्यक कार्यक्रम है जो सभी भाई बहनों को अपने द्वारा अपने में लेना ही चाहिए। आप किस मत के हैं, किस मजहब के मानने वाले हैं, किस संप्रदाय के हैं, किस गुरु से दीक्षा ली है आपने, क्या आपका विधि विधान है। मानव सेवा संघ को इन विधियात्मक बातों से कोई संबंध नहीं है। हम सब लोग पूछते ही नहीं है, कुछ हस्तक्षेप नहीं करते हैं। जैसी आपकी रुचि है ठीक है भाई, जैसा आपका विश्वास है ठीक है। यह तो जीवन का वैज्ञानिक सत्य है कि जो भौतिक तत्व हैं उनमें निरंतर परिवर्तन हो ही रहा है और परिवर्तनशीलता उनका स्वभाव ही है। इसलिए कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, इनके निर्माण में विनाश का क्रम साथ में जुटा हुआ होता है। यह तो एक विशेष काल की अवधि में एक बनी हुई आकृति दिखाई देती है और प्रतिदिन उसमें परिवर्तन प्रत्येक क्षण में हो रहा है। उस परिवर्तन को हम सूक्ष्म दृष्टि से नहीं देखते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि ये तो वही व्यक्ति है, ये तो वही मेरा मित्र है, ये तो वही मेरा विरोधी है, ऐसा देखते हैं। और नहीं तो आज के आधुनिक युग के मनोविज्ञान वेत्ता भी कहते हैं कि नो परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस आर रिपीटेड, कभी उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा जो भी कुछ दृश्य जगत की आकृति हम ग्रहण करते हैं ज्ञान क्षेत्र में, वो जाता है मस्तिष्क में। एक बार का जो आपका वो दृश्य का अनुभव है वो कभी भी दोहराया नहीं जाता। पलक खोल करके दूसरी बार आप देखना आरंभ करेंगे तो देखने का अपरेटस जो है आपके आपके मस्तिष्क में देखे हुए दृश्य के प्रभाव को ग्रहण करने की जो मशीन है वो भी बदल गई, उसकी पृष्ठभूमि भी बदल गई, बाहर का दृश्य भी बदल गया। तो जहां इतना परिवर्तन है, निरंतर परिवर्तन है, उसको अपने जीवन का आधार नहीं बनाना, उसमें विश्वास नहीं करना, उसका संग्रह नहीं करना। क्या करना है? केवल उसका सदुपयोग मात्र ही मनुष्य के जीवन में अर्थ रखता है, अन्यथा दूसरा कोई अर्थ नहीं। इस सत्य को आप स्वीकार करें, वैज्ञानिक दृष्टि से इस सत्य को स्वीकार करें, दार्शनिक दृष्टि से इस सत्य को स्वीकार करें। कौन सा सत्य? कि जो बन रहा है, बदल रहा है, बिगड़ रहा है, मिट रहा है, वह जीवन नहीं हो सकता। यह दार्शनिक सत्य है। स्वीकार करना पड़ेगा कि नहीं जी? अगर जीवन के केवल वैज्ञानिक दृश्य को लीजिएगा, दार्शनिक सत्य को स्वीकार नहीं कीजिएगा, तो समस्याओं का समाधान नहीं होगा, क्योंकि वह बहुत जोरदार है। विज्ञान का जो क्षेत्र है वह तो उस अविनाशी सत्य की, उस अव्यक्त तत्व की व्यक्त अभिव्यक्ति है। तो ये तो बाहरी अभिव्यक्ति हो गई ना। तो जिसमें से यह सब उत्पन्न हो रहा है, जिस अव्यक्त तत्व की यह बाह्य अभिव्यक्ति आप देख रहे हैं, उस सत्य को स्वीकार नहीं करिएगा तो समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इसलिए उस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। तो उस सत्य को भी स्वीकार करें आप कि मेरा तो स्वतंत्र अस्तित्व है, मैं तो अविनाशी तत्वों से बना हूँ और मुझे तो वही अविनाशी आनंद चाहिए, मुझे तो वही कभी न मिटने वाली शांति चाहिए, मुझे तो वही कभी न घटने वाला प्रेम का रस चाहिए। अगर यह जीवन का जो मौलिक मांग है इसे आप स्वीकार करते हैं तो समस्या का समाधान बहुत सहज से हो सकता है। कैसे हो सकता है? कि जब जब संसार पर दृष्टि पड़े उसके काम आने को सोचिए और संसार के काम आने का समय निकल जाए, शक्ति खर्च हो चुके तो विश्राम का समय लीजिए और विश्राम के समय में आपकी यह जानकारी बहुत मदद करेगी कि देखा हुआ दृश्य मेरा जीवन नहीं है। तो मेरा जीवन कहाँ है? तो अपने में है। मेरा जीवन कैसे मिलेगा? तो पर की ओर से अपने को हटाने से मिलेगा। तो जो पर है, जो स्व नहीं है, जो स्व में नहीं है, उसकी ओर से अपने को हटा लीजिए। तो यदि कामनाओं का वेग नहीं है, यदि अतृप्त वासनाओं का उद्वेग नहीं है, यदि आपने प्राप्त सामर्थ्य का सदुपयोग किया है, ये सब बातें यदि ठीक ठीक आपके जीवन में प्रवृत्ति काल में निभ रही हैं, तो शांति काल में सहज भाव से शरीर और संसार से असंग होकर अपने आप में शांत रह सकेंगे। प्रयोग करके देखना होगा। मुंह जबानी कहने से काम नहीं बनता है, ना व्याख्यान देने से काम बनता है, ना व्याख्यान सुनने से काम बनता है। बोलने से भी काम नहीं बनता, सुनने से भी काम नहीं बनता। काम कैसे बनता है कि प्रयोग में लाया जाए। तो प्रवृत्ति काल को यदि साधना दृष्टि से हम बिताएं, तो निवृत्ति काल में कोई कारण नहीं है कि सहज भाव से शांति की अभिव्यक्ति न हो जाए। और आप देखिए, जीवन का जो तत्व है, जो अविनाशी तत्व है, जिसका कभी नाश नहीं होता, उसमें प्रवेश शांति की भूमि से ही आरंभ होता है। बाहर की हलचल से हटने के बाद ही उस शांति में प्रवेश होता है। और समग्र सृष्टि की सारी क्रियाओं में शांति का तत्व स्वतः ही विद्यमान है। शरीर विज्ञान और मनोविज्ञान के अध्ययन में जहां हम प्रयोगशाला में प्रयोग करते रहते थे, वहां देखते थे हमेशा शरीर की कितनी क्रियाएं ऐसी हैं कि हमारे बिना जानते ही उसमें कार्य और विराम अपने आप चलता रहता है, अपने आप चलता रहता है। शांति की ही वह भूमि है जिसमें से सब प्रकार की गति का आरंभ होता है, और शांति ही वह भूमि है जहां जा करके सब गतियां विलीन होती हैं। तो अनंत जीवन के अनुभव का आरंभ शांति में से होता है। इस दृष्टि से हम सभी भाई बहनों को यदि जीवन में से अभाव का नाश करना है, असमर्थता का नाश करना है, पराधीनता का नाश करना है, नीरसता का नाश करना है, तो शांति संपादन को दैनिक जीवन का अनिवार्य अंग बनाना होगा, अनिवार्य अंग बनाना होगा। और आप देखेंगे कि जितना अधिक शरीर और संसार के संयोग जनित व्यस्तता में आप बिताते हैं, उतनी जल्दी जल्दी प्राण शक्ति का ह्रास होता है। भोजन लिया जाता है तो स्थूल शरीर का थोड़ा पोषण हो जाता है, थोड़ी देर प्रकृति ने बाध्य करके स्नायु मंडल के सूत्रों को इतना शिथिल कर दिया, साइकोलॉजी ऑफ ड्रीम, साइकोलॉजी ऑफ स्लीप, ये सब हम लोग पढ़ते थे तो उसमें बताया जाता था कि प्रकृति का विधान ऐसा है कि मस्तिष्क के स्नायु के कार्य को वो जबरदस्ती शिथिल कर देती है, आदमी विवश हो जाता है सोने के लिए। तो सो जाने से ये कुछ सूक्ष्म तंतुओं को भी पोषण मिल जाता है। तो भोजन और शयन से भौतिक तत्वों में थोड़ा विराम आ करके खर्च की हुई शक्ति को पुनः संचित करने का काम हो जाता है। परंतु आपकी जो असमर्थता है कि क्या बताएं, जो परिस्थिति चली गई उसके चले जाने के दुख से मैं अपने को मुक्त नहीं कर सका, क्या बताएं, शरीर तो मिटने वाला है, मिटेगा जरूर, परंतु मृत्यु के भय से मैं अपने को मुक्त नहीं कर सका। इस प्रकार की जो असमर्थता है कि क्या बताएं, आवश्यकता तो ऐसी मालूम होती है कि जीवन में प्रेम का ऐसा ऐसा अजस्र रस धारा बह जाए कि कभी भी नीरसता आए ही नहीं। तो विश्राम में शक्ति की वृद्धि होती है, इस बात का अनुभव तो अपने लोगों को है, लेकिन स्थूल निद्रा की जड़ता में वो जड़ स्वरूप की शक्ति की वृद्धि हुई और उसको ले करके हमने फिर जड़ जगत में खर्च कर लिया। इतनी सी बातों का अनुभव तो अपने लोगों को है, परंतु जागृत सुषुप्ति में निद्रा की जड़ता भी नहीं है, शरीर और संसार के संयोग का भोग भी नहीं है, उनके चिंतन का दुख भी नहीं है, उस समय की जो शांति है उस शांति में अलौकिक शक्तियों की वृद्धि होती है। उन अलौकिक शक्तियों की वृद्धि होने पर मृत्यु का भय छूटता है, उन अलौकिक शक्तियों की वृद्धि होने पर संयोग वियोग की दासता का नाश होता है, उन अलौकिक शक्तियों की वृद्धि होने पर शरीर और संसार तो ऐसे छूटता है, ऐसी इनकी विस्मृति होती है, उस अलौकिक आनंद में अपने को इतना अच्छा लगता है कि फिर उसमें से पुराने राग के कारण कभी उत्थान हो जाए और संसार भासित होने लगे, दृश्य दिखाई देने लगे तो अच्छा नहीं लगता, इतना बढ़िया वो जीवन है। उस जीवन का अनुभव हम भाई बहनों को प्रतिदिन के दैनिक रूटीन में आना चाहिए। ऐसा मत सोचिए कि आप वेश बदल देंगे, कि समाज छोड़ देंगे, कि घर छोड़ देंगे, कि बाल बच्चों का लालन पालन छोड़ देंगे तब उसके अधिकारी बनेंगे, ऐसी बात नहीं है। संसार किसी को नहीं पकड़ता है, बाल बच्चे किसी को नहीं पकड़ते हैं, घर गृहस्थी की परिस्थिति में कोई सामर्थ्य नहीं है कि आप विवेकशील के विवेक पर पर्दा डाल दे, जगत में सामर्थ्य नहीं है। ये मेरी अपनी भूल है कि मुझे दोनों बातें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, और फिर भी आश्चर्य है कि कभी न मिलने वाले संसार के पीछे दौड़ दौड़ करके मृत्यु के मुख में समाने को हम लोग तैयार हैं, और कभी न साथ छोड़ने वाले नित्य निरंतर विद्यमान रहने वाले परमात्मा के बारे में सोचने के लिए फुर्सत ही नहीं है। अजीब बात है। तो हमारे दुखों का नाश किसी और उपाय से हो नहीं सकता। मैं तो देहातीत जीवन की बात तो मैं क्या कहूंगी, वो तो कहने की होती नहीं है, लेकिन थोड़ी सी बात जो साधन काल में आप अनुभव कर सकते हैं, आज से आरंभ कर सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कि यदि वस्तुओं और व्यक्तियों का महत्व आपके जीवन में से निकल जाए, अपने लिए मेरे लिए इनकी आवश्यकता नहीं है, ये मेरे पास क्यों है, तो हमारे भीतर पुराना राग बन गया है, स्वार्थ बुद्धि से सुख बुद्धि से जो बीमारियां मैंने अपने भीतर पैदा कर ली, प्रकृति और प्रकृतिपति परमात्मा ने उन बीमारियों से मुक्त होने के लिए आज मुझे यह परिस्थिति उन्होंने दिया है, ऐसा आप सोच लीजिए। तो क्या करेंगे इनका, तो इनका तो सदुपयोग करेंगे। तो ऐसा बढ़िया लगता है कि काम करने के समय बहुत ही उत्साह पूर्वक बिल्कुल निष्प्रिय भाव से अच्छी तरह से काम करते रहिए, खूब प्रसन्नता पूर्वक, और काम खत्म होते ही ऐसा ऐसा अच्छा लगता है कि चलो अब तो अपनी शांति में रहेंगे, चलो अब तो परम प्रेमास्पद प्रभु की याद में रहेंगे, चलो अब तो निज स्वरूप की स्थिति में आनंद में रहेंगे, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही आप देखेंगे यदि एक बार जीवन में साधना का दृष्टिकोण बढ़ा लिया आपने और आपके ध्यान में आ गया कि भाई सारा काम मुझे क्यों करना है, तो इसलिए करना है कि करने के राग से छुट्टी पा करके उस विश्राम में रहेंगे जहाँ जहाँ अपना जीवन है, जहाँ अपने में से शांति अभिव्यक्त होगी, जहाँ अपने में से अजस्र आनंद का रस स्रोत फूटेगा। अगर यह दृष्टिकोण आपने बना लिया तो शांत रहने के लिए बड़ा चाव हो जाएगा। मैं तो साधन काल की बात आपको बताती हूँ कि थोड़ी देर के लिए आप शांत हो जाइए, शरीर और संसार के चिंतन से मुक्त हो जाइए, तो जैसे ही बाहरी कार्य आप छोड़ेंगे स्थूल शरीर से साथ छूट जाता है, और जब आप इसके साथ को छोड़ करके अपनी शांति में रहने का उद्देश्य लेकर बैठेंगे तो इसका भास खत्म होने में देर नहीं लगती है, और जैसे ही स्थूल शरीर का भास खत्म होता है, सूक्ष्म शरीर में वृत्ति आकर के सिमटती है, बहुत अच्छा लगने लगता है। और थोड़ी ही देर में जैसे ही चिंतन बंद हो गया तो कारण शरीर की स्थिति की शांति ही इतनी अच्छी लगती है जितनी कि दुनिया में संसार की कोई प्रवृत्ति कभी सुखद लगी नहीं थी। आपको स्वयं ही इतना अच्छा लगेगा कि उसे छोड़ना पसंद नहीं करेंगे। तो प्रयोग आरंभ करिए, आपको पता चलेगा। आज से ही आरंभ करिए।